તારીખ 21-8-1995 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 856 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 128.
પત્ર 856 ઓમ નમઃ તુમ્હારા પત્ર સુખલાલ કા લિખા હુઆ લિખે હુએ પત્ર મિલે યહાં પર સમાગમ ફિલહાલ હોના અશક્ય હૈ ઇધર સે લિખતે હૈ સ્થિતિ ભી વિશેષ સંભવ દેખતી નહીં નહીં દિન મેં જ્યાદા રુકને કા પ્રોગ્રામ નહીં હોતા आपको जो समाधान विशेष की जिज्ञासा है या कोई एक निवृत्ति योग समाधान हमें योग्य है, आपको जो समाधि विशेष की जिज्ञासा है, समाधान विशेष यानी कोई खास विषय में समाधान को चाहते हैं तो पत्र द्वारा नहीं लिख करके कोई निवृत्ति के काल में व्यक्तिगत रूबरू में मिलने पर भी वो योग्य रूप से समाधान हो सकेगा, ऐसा सुझाव है। किसके पर लिखा हुआ है पत्र मालूम है? 856 अब जो पत्र का विषय है वो चालू करते हैं। जिज्ञासा बल, विचार बल, वैराग्य बल, ध्यान बल और ज्ञान बल वर्धमान होने के लिए आत्मार्थी जीव को तथा वो ज्ञानी पुरुष का समागम विशेष रूप से उपासना करने योग्य है। क्या कहते हैं कि जिसको आत्मकल्याण करना है, ऐसा कोई भी आत्मार्थी जीव हो जो अपना आत्मकल्याण करना चाहता है, उनको शुरू में जिज्ञासा बल होना चाहिए। हमारा आत्मकल्याण कैसे हो उस विषय की जिज्ञासा है, और वो जिज्ञासा भी ऊपर ऊपर के नहीं किंतु बलवान जिज्ञासा है। ऐसी जिज्ञासा होने के लिए ज्ञानी पुरुष का समागम है तो उपासना योग्य है, मैंने समागम में रहना चाहिए। ज्ञानी पुरुष के समागम में रहने से आत्मकल्याण की जिज्ञासा विशेष हो सकती है। जिसको सामान्य है या नहीं है उसको उत्पन्न होती है, ऊपर ऊपर की है उसको बलवान रूप से हो सकती है। ये सत्संग का प्रभाव है, सत्संग से ये फायदा होता है कईयों को। इस भूमिका में विचार बल, आत्मकल्याण का विचार बलवान रूप से आए, इसके लिए भी ज्ञानी पुरुष का समागम है वो उपासना करने योग्य है। वैराग्य बल उदय भावों में निरसता आ जाए, उदय के परिणामों में निरस हो जाए, ऐसे बलवान रूप से वैराग्य प्राप्त हो, उसके लिए भी ज्ञानी पुरुष का प्रत्यक्ष समागम उपासना करने योग्य है। मैंने ज्ञानी पुरुष के समागम, विशेष समागम, विशेष रूप से समागम करना, समागम करना नहीं किंतु विशेष प्रकार से समागम करना, ये समागम कितना पहलू को फायदा करती है, जिज्ञासा बल भी बढ़ाता है, विचार बल भी बढ़ाता है, वैराग्य बल को भी बढ़ाता है। और ध्यान बल मैंने एकाग्रता होने को बलवान रूप से, वो भी यहाँ ध्यान बल मैंने क्या है, आत्मार्थी जी है तो उनका भी ध्यान बल है, उसमें चंचलता घटती है और अपने आत्महित के विषय में वो अग्रेसर होता है, एकाग्र होता है, उसको यहाँ ध्यान बल कहते हैं। आत्मार्थी को भी स्वरूप ध्यान लगने का सवाल नहीं है, यहाँ तो ज्ञान बल मैंने चंचलता का छुपना, चंचलता कम होना,
ज्ञान बल
वो भी हो सकता है, सत्पुरुष में विशेष रूप से लीन होना, उसको भी ध्यान बल कहते हैं, वो भी समागम से ही होता है। और देख लीजिए, पहले समागम नहीं होता था तो उस प्रकार के परिणाम नहीं थे, अब समागम होने पर ऐसे परिणाम होते हैं कई लोगों को। अब क्रम से इस तरह आगे बढ़ता है, सर्वप्रथम जिज्ञासा बलवान होती है, इसके बाद इसका विचार बल तीव्र होता है, उस विषय में अनेक पहलू से, फिर इसका वैराग्य बढ़ता है, बलवान वैराग्य होता है तो ध्यान होता है। अन्य पदार्थों में तीव्र रस वाले परिणाम भी हो और एकाग्रता भी हो परमार्थ के विषय में, वो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि एक संसार भक्ति है और एक असंसार भक्ति है, दोनों विरुद्ध है, दोनों भक्ति एक साथ नहीं रहती। जीव संसार को भी भजे और जीव मोक्ष को भी भजे तो संसार से छूटने का उपाय है, दो भजना एक साथ होने वाली नहीं है। और जिसको वैराग्य बल बढ़ता है वही ध्यान बल में आ सकता है, उसी को एकाग्रता हो सकती है, और उस प्रकार से जिसको निर्मलता आएगी उसी को ही ज्ञान बल होता है। ज्ञान बल मैंने चारों पहलों से विषय को स्पष्ट समझे, स्पष्ट करें और अपने आत्मा को ज्ञान में प्रत्यक्ष करें, ज्ञान बल माने क्या, ज्ञान बल मैंने अनेक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो ऐसा नहीं लेना इधर, ज्ञान बल माने बलवान रूप से अपने स्वरूप को जाने, जो प्रत्यक्ष है अपना स्वरूप, जो सहज प्रत्यक्ष है उसको प्रत्यक्ष करे, बलवान रूप से प्रत्यक्ष करे और अधिक स्पष्ट रूप से स्पष्ट करे। ज्ञान में विशदता का होना, विशदता माने निर्मलता का होना, उसी से ज्ञान बलवान होता है। जो अपने स्वरूप की पकड़ में रहता है, जो ज्ञान अपने स्वरूप को पकड़ करके रखता है, वो तो कहाँ से आएगी? निर्मलता से आएगी, स्पष्टता से आएगी, विशदता से आएगी। और उसमें मेन फैक्टर कोई है तो वो प्रत्यक्षता का है। आत्मा स्वरूप से सहज प्रत्यक्ष है और ज्ञान में प्रत्यक्ष रूप से परिणमन करने का स्वभाव है। जो स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप को जितना अधिक प्रत्यक्ष करता है उतना वो ज्ञान बलवान होता है। एक दृष्टांत लेते हैं इस विषय में कि जैसे एक शायिक सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वाला साधक है जिसको अंग पूर्व का ज्ञान है। कितना है? अंग पूर्व का ज्ञान है, विस्तार वाला। और आत्मा को भी वो ज्ञान में प्रत्यक्ष अनुभव करता भी है क्योंकि सम्यक दृष्टि। दूसरा एक जीव मुनि दशा में है, छठे सातवें गुण स्थान में है, जिसको बिल्कुल सूक्ष्म ज्ञान नहीं है, सुषमा भिन्न शिवभूति मुनि जैसा ले लो। जिसको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, कोई विशेष ज्ञान नहीं, कोई याददाश्त नहीं, स्मरण शक्ति नहीं कोई, फिर भी छठे सातवें गुण स्थान में वो आरूढ़ है। तो आत्मा को कौन ज्यादा प्रत्यक्ष करता है? शायिक सम्यक दृष्टि अंग पूर्वधारी है वो, या जो मुनि दशा में है वो? आत्मा को अधिक विशद रूप से, स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष बने से मुनि दशा में जो साधक है उस जीव की पकड़ है। उसको कहते हैं ज्ञान बल। ज्ञान बल माने क्या? ज्ञान बल माने शास्त्र ज्ञान नहीं है, स्वरूप को अधिक अधिक तौर से प्रत्यक्ष कर लेना। इसलिए ध्यान बल के पीछे ज्ञान बल लिया है, पहले ज्ञान बल और पीछे ध्यान बल ऐसे नहीं लिया है। वरना सामान्य उपदेश में वो बात के श्रद्धा ज्ञान पीछे चारित्र होता है और ध्यान है वो चारित्र का विषय है। यहाँ तो आत्मार्थी जीव की बात है, तो आत्मार्थी जीव को तो चंचलता घटती है, कोई उसका ध्यान बल है इस भूमिका का। पर वही आत्मार्थी जीव अपने स्वरूप को निर्मल ज्ञान में प्रत्यक्ष कर ले वो इसका ज्ञान बल है। ऐसा होने के लिए ये सभी प्रकार के बल,
ज्ञान बल और ध्यान बल दोनों साथ में नहीं है।
भले ही साथ में हो तो भी फैक्टर तो अलग अलग है ना।
फैक्टर अलग अलग है। इस समय अगर ज्ञान बल नहीं है तो ध्यान बल भी नहीं है, और ध्यान बल है तो उस समय ज्ञान बल है ही।
तो एक एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अब बल माने क्या? कि वीर्य गुण का परिणमन का उसके साथ संबंध होना, जिज्ञासा के साथ जो वीर्य लगता है तो जिज्ञासा बल है, विचार में जो वीर्य लगता है वो विचार बल है, वैराग्य में पुरुषार्थ लगता है वो वैराग्य बल है, ध्यान में एकाग्रता में निश्चंचलता में जो वीर्य लगता है वो ध्यान बल है, और ज्ञान के साथ जो मजबूती होती है उसको ज्ञान बल कहते हैं।
ज्ञान
में तो स्वरूप ध्यान में तो प्रत्यक्षता है ही, लेकिन यहाँ क्या लिखे आत्मार्थी जीव को ऐसा लिया है तो आत्मार्थी की भूमिका लिया है, तो आत्मार्थी की भूमिका में पहले चंचलता कम होती रहती है, वैराग्य बढ़ने से चंचलता का कम होना बनता है तो वैराग्य बल है, वो ज्ञान बल है। तो इसमें क्या है कि ज्ञान को भी स्वरूप जहाँ तक भाव भाषण में नहीं आया,
आत्मार्थी को का चीज का जो बात है तो उसमें भाव भाषण वाला बात नहीं ले सकते,
ले सकते हैं
स्वरूप प्रत्यक्षता का बात,
लेकिन लेकिन जो भाव भाषण है वो ज्ञान की पर्याय है, जबकि ध्यान में चारित्र लेना है,
मतलब जो भाव भाषण पहले का जो स्टेज
उसमें चंचलता कम होती
है
वो ध्यान बल में
जाएगा,
ज्ञान बल में
जाएगा
हाँ, उसमें क्या है कि विचार की भूमिका में जिसको विक्षेप कम होता है,
अपना जो चर्चा चला था परसों रात में,
हाँ
जो ध्यान के विषय में जो पहलुओं का,
उसमें तो स्वरूप ध्यान का विषय चलाया था, तो आत्म ध्यान का विषय चला था, कि आत्म ध्यान किसको लगता है,
वो ध्यान वाला विषय नहीं लेना,
नहीं वो नहीं, यहाँ तो जिज्ञासा से कोई आगे बढ़ता है तो विचार बल में आता है, विचार बल से आगे बढ़ता है तो वैराग्य में आता है, वैराग्य में आगे बढ़ता है तो उसकी चंचलता समाप्त होती है या बहुत कम हो जाती है, इसके पहले परिणामों की जो स्पीड होती है अन्य 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 पदार्थों में जाने की एक स्पीड होती है, बहुत घूमता है उपयोग तेजी से,
लाइक आए और चला जाए,
हाँ वो विषय बदलता है, जीव का उपयोग है तो विषय बदलता है उसमें स्पीड होती है तो चंचलता है,
उपयोग जो बदलता है तो लाइक बाह्य उपयोग से है, जो बाह्य पदार्थ की गति का जो उपयोग है, जो परलक्षी जो भाव है, मतलब अपने अभिप्राय को अपने प्रयोजन को चिन्ह करके या उसकी कमी से रिलेटेड जो भाव उत्पन्न होता है वो सब्जेक्ट बदलता हो, इसकी बात नहीं है अभी, या तो इसे बाहर से अंदर की तरफ आए,
बाहर में अनेक विषय है,
पर
बार में जो अनेक विषय हैं उसमें जीव का उपयोग का स्पीड होता है, इसको गति कहते हैं, तो गति मंद होती है, जितनी तेज गति है उतना विक्षेप है, धीरा धीरा वो जरूरी है, जो धीरा जो स्पीड से दौड़ता है वो तो धीरी चाल में आएगा फिर खड़ा रह जाएगा। मैं और एक दृष्टांत देता हूँ, अपने क्या फिर फुदड़ी फरे थे ऐसे कोई घूमता है, अब वो ऐसे घूमता है उसको ऐसे घूमना है, तो अगर वो सडनली ऐसे घूमता है वो ऐसे घूमने को जाएगा गिर जाएगा, जैसे गाड़ी बहुत स्पीड में चलती है आप सडनली ब्रेक लगाओगे गुनाह खा जाएंगे, तो उसको दो तीन दफे ब्रेक लगाना जरूरी है, फिर भी कभी ऐसी परिस्थिति आई कि अभी अभी पूरी ब्रेक नहीं लगाई तो एक्सीडेंट हो जाता है, तो पूरी ब्रेक लगाओ तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी उल्टी हो जाएगी, टकराएंगे नहीं तो उल्टे हो जाएंगे। तो ऐसे उपयोग की एक स्पीड है तो मुमुक्षु की भूमिका में डाउन होती है, कम होती है, फिर वो थम्भेगी, फिर वो उल्टा चक्कर देगी, वो इंट्रोवर्ट होना है उनको, अंदर में जाना है। तो बाहर तो तेजी से जाता ही है, इधर 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 उधर 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 उधर, कभी अमेरिका चला जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, इसका स्पीड तो बहुत है, मन की गति कितनी तेज है और जल्दी से उपयोग बदलता है। तो जिज्ञासा बल से, विचार बल से, वैराग्य बल से जब आगे बढ़ता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है। मुख्य अवरोध है वो आसक्ति के परिणाम है, अवैराग्य दशा और असमाधान दशा, अवैराग्यपना, असमाधानपना, और अवैराग्य कहो के आसक्ति कहो, बाह्य पदार्थों में तीव्र आसक्ति हो और कहीं समाधान नहीं होता हो तो चित्त में विक्षेप रहा करता है और तीव्र कर्तृत्व बुद्धि हो कि हम जो चाहे ऐसा नहीं होता है तो परिणाम में उग्रता हो जाती है, हम चाहे ऐसा क्यों नहीं होता है, हम ऐसा करना चाहते थे क्यों नहीं हुआ, ये जो जोर से कर्तृत्व बुद्धि आती है, ऐसे कई प्रकार के फैक्टर हैं, वो चित्त को इतना विक्षिप्त करता है, इतना डिस्टर्ब कर देता है। जैसे कि आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में पैसे बहुत हैं, लोग मल्टी मिलियनर होने के बावजूद भी उसका चित्त की विक्षिप्तता उतनी है कि रात को नींद नहीं आती। बहुभाग मनुष्यों को वहां रात को दारू पीना पड़ता है, इसलिए वो लोग रात को डिनर रखते हैं, दोपहर को लंच रखते हैं और रात को डिनर रखते हैं, जबकि हमारे यहाँ पेट भर के खाना हो तो दोपहर का खाना और शाम को थोड़ा कम खाना। हमारी क्या सिस्टम है कि पेट भर के खाना हो तो दोपहर को पेट भर के खाओ और घंटा दो घंटा आराम कर लो, नींद ले लो, फिर काम करो और रात को थोड़ा कम खा लो। तो वो लोग दिन को कम खाते हैं और रात को बहुत खाते हैं, उल्टा है, काम उल्टा है, दिमाग भी उल्टा है। उन लोगों के चित्त में विक्षिप्तता बहुत है, नींद नहीं आती, दारू भी पीते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स लेते हैं, टेबलेट लेना पड़ता है, बहुत सुविधा होने के बावजूद भी उनको आराम क्यों नहीं है, मन का आराम नहीं है, बहुत उपयोग घूमता है। इसलिए यहाँ के जो स्टेटिस्टिक्स है उसमें हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन सबसे ज़्यादा है, हार्ट फेल सबसे ज़्यादा है, मैडनेस सबसे ज़्यादा है, डायबिटीज जो बड़े बड़े रोग हैं वहाँ ज़्यादा है। आसक्ति में तीव्र रुचि होना है पर पदार्थों में, पंचेंद्रियों के विषय में तीव्र रुचि होना है, तीव्र एकाग्रता होना, तीव्र रस का होना, उसको कहते हैं आसक्ति। और ऐसे रस के परिणाम से चित्त विक्षिप्त हो जाता है, बहुत चंचलता को प्राप्त करता है और यही मलिनता का और आकुलता का कारण बनता है। ये मलिनता का भी कारण है और आकुलता का भी कारण है, ऐसा होता है। तो निश्चिंतता आती है, एकाग्रता आती है तो निश्चिंतता आती है, निराकुलता आती है, पवित्रता आती है, ऐसा बन। इसका एक साइंस है बिल्कुल, देखिए शांति का भंडार तो हमारे आत्मा में है, परम शांति, पर शांति अनंत सुधामय, अमृतमयी शांति। कितनी कि जिसकी कोई हद नहीं है उतनी। आत्मा खुद शांति का सरोवर है जिसमें शांति की लहरें उठे। वहां से वहां एकाग्र होकर के उस शांति को हम भोगते नहीं, प्रकट करते नहीं, पर उस शांति लेने के लिए हम दौड़ लगाते हैं कहीं बाहर। तो अंदर की शांति को झटका लगता है, इधर नहीं जाके इधर जाते हैं तो झटका लगता है। झटका लगेगा तो क्या होगा, पेन होगा ही होगा, दुख होगा ही होगा, अशांति होगी, और क्या होगा। तो लोग क्या है कि पारमार्थिक विषय तो वहां है नहीं, अकेली भौतिकवाद की वहां बाहुल्यता है, पर उसका कंपटीशन लगा है वहां पर। हम तो बाहर उतने गए नहीं है, लेकिन नैरोबी के एयरपोर्ट पे एक दफे हमारा 12 बजे का रात का फ्लाइट था, उसी वक्त तो बहुत से 3-4 यूरोप के फ्लाइट भी थे, यूरोपियन कंट्रीज के। तो वहाँ के लोग जो है बगल के काउंटर में लाइन लगा के खड़े थे, उसमें बहुत सी यूरोपियन लेडीज थे, तो बड़ी बड़ी चिरुट पीती थी, इतनी लंबी लंबी चिरुट कि जिस हम तो 10-15 फीट दूर थे, फिर इसकी वास इतनी तीव्र थी कि अपन को लगे कि ये कैसे पीती है, अंदर कैसे लेती हो, जो धुआं 15 फीट दूर अपने को कंटाला लाता है, विचित्र बहुत अगली वो वास अच्छी नहीं लगती है, चिरुट लंबी आती है ना। हाँ, तो कई लेडीज चिरुट पीती थी रात को, तो उनको इनके चेहरे से असेसमेंट करें, इनके मनोविज्ञान, मनोविज्ञान होता है ना, इसके मन का अगर कोई असेसमेंट करे तो ऐसा लगे कि वो चारों ओर से सभी विषयों को एक साथ जुटाना चाहते हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है। वो गले में कैमरा लगाना हर एक को, चिरुट पीना, और परिणाम में उतना चंचलता, विमलता, बहुत दुखी दिखने में आए। तो क्या होता है, फिर वो लोग पागल हो जाते हैं, हिप्पी हो जाते हैं, तो वैसे अनेक प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। यही कारण है भोगे रोग भयम, रोग में जाते हैं।
भाव
भाषण के बाद आएगा,
भाव भाषण में जीव को जो लाने में ये भाव कारण बनता है, ऐसा
उसमें चंचलता घटती है, वो कारण है।
और वो ज्ञान
चंचलता विशेष होने से अंदर का प्रयास कम चलेगा।
अरे नहीं, ये जो ज्ञान
सामान्य
का
अभिभूत
ज्ञान
विशेष का जो
ज्ञान बल में जाएगा, तो लाइक स्वरूप प्रत्यक्ष के पहले तो ज्ञान बल वाला फैक्टर है, उसमें वो वाला बात
हो जाएगा।
तो लाइक स्वरूप प्रत्यक्ष के पहले तो ज्ञान समय स्वरूप होता नहीं है, बराबर अज्ञान रूप परिणाम भी रहता है, अज्ञान रूप परिणाम भी रहता है, न पूर्ण अज्ञान रूप है न पूर्ण ज्ञान रूप है। तो उस समय ज्ञान बल जो शब्द का प्रयोग है वो किस हिसाब से किया है?
तो ज्ञान
ज्ञान ज्ञान रूप में तो है नहीं पूरा मौजूद, तो लेकिन यहाँ पे जो ज्ञान बल का जो प्रयोग है उसके पीछे क्या आशय है, थोड़ा
स्वरूप प्रत्यय ज्ञान लगने में एक फोर्स होता है, तभी लगता है। इस फोर्स को कहते हैं बल या वीर्य। स्वरूप के प्रति उपयोग को लगाना है, उसमें फोर्स चाहिए, बिना फोर्स नहीं लग सकता।
वो तो जब स्वरूप आशीर्वाद से प्रत्यक्ष हुआ भावाचन से तो लाइक वो बल तो वो उत्पन्न कराएगा। तो बल उत्पन्न करने वाला फैक्टर तो है, वो वाला बात तो है, पर ये जो ज्ञान बल जो बोला वो किस हिसाब से?
ज्ञान बल तो ही उपयोग फोर्स से चलाने उसको बोलते हैं ज्ञान बल। जिस ज्ञान के साथ वीर्य गुण का जुड़ान हो, साथ साथ हो गया। जो पुरुषार्थ दिशा बदलता है, अंदर की दिशा को पकड़ता है उपयोग के साथ साथ, उसको कहते हैं ज्ञान बल। जैसे कि जैसा स्वरूप है वैसा ही मैं हूं, ऐसा एक जोर आएगा, जोर से वो परिणाम आएगा। अब दशा तो स्वविकल्प दशा है, पर निर्विकल्प दशा और स्वविकल्प दशा परस्पर विरुद्ध है, इसलिए विकल्प से निर्विकल्प नहीं हुआ जाता, क्योंकि वो तो विरुद्ध जाता है विकल्प। तो वहां ऐसा कौन सा फैक्टर है जिस कारण से वो निर्विकल्प होता है? आगे जाकर के भावासन वाला जी निर्विकल्प दशा में आएगा, सहानुभूति को प्राप्त होगा ना। अब उस सहानुभूति को जो प्राप्त होगा वो तो किस कारण से होगा? विकल्प तो है, क्योंकि तो विकल्प का बल क्षीण होता जाता है, पर ज्ञान बल तीव्र होता जाता है। तो ज्ञान बल के कारण से स्वरूप में लीनता में आएगा। स्वरूप में लीनता आने का कारण वह ज्ञान बल है, इसलिए ज्ञान बल को आखिर
में
ऐसी बात है। ज्ञान की प्रधानता से उसको ज्ञान बल कहते हैं, और उसमें आत्मरुचि है, आत्मिक पुरुषार्थ है, स्वरूप की महिमा है, ये सभी गुणों के कारण से उसको आत्मभाव भी कहते हैं, आत्मबल भी कहते हैं, पर ज्ञान की प्रधानता से उसको ज्ञान बल कहते हैं।
तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएट हो जाता है आत्मभाव और आत्मविकल्प का। आत्मभाव अभिभूत हो जाता है, आत्मविकल्प की वो भूत हो जाता है,
आत्मविकल्प तो खत्म हो जाएगा।
हाँ, मतलब वो
अभाव निर्बल होकर के वो खत्म हो जाएगा। तो क्या है कि जो विकल्प पूर्वक स्वरूप की महिमा करते हैं उनको ये समाधान नहीं होता, शंका होती है कि स्वरूप की महिमा तो विकल्प से आई, और महिमा बढ़ा तो विकल्प क्यों नहीं बढ़ेगा? स्वरूप की महिमा तो हम विकल्प पूर्वक करते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा परमानंद स्वरूप है, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, वो है वो है वो बहुत सी बातें, वो बात हम विकल्प पूर्वक करते हैं, और हमारी महिमा हम बढ़ाते हैं स्वरूप की। तो ये स्वरूप की महिमा बढ़ाने वाले विकल्प भी बढ़ जाएंगे तो निर्विकल्पता होगी कैसे? ये शंका कईयों को होती है। जो यथार्थ परिणमन की परिस्थिति को नहीं जानते हैं, अनजाने हैं, उनको ये शंका होती है। जो ज्ञान बल को वहां समझते हैं उनको ये शंका नहीं होगी कि जिस भाव वासन में आत्मस्वरूप का ग्रहण हुआ वो ज्ञान के साथ पुरुषार्थ जुड़ता है तो उसको कहते हैं ज्ञान बल। तो वहां ज्ञानी कहते हैं कि वहां अकेला विकल्प नहीं है, स्वरूप का भावभाषण होने से स्वरूप की महिमा तो बहुत आई, पर स्वरूप की महिमा बहुत आई पर विकल्प साथ में है तो विकल्प बढ़ जाएगा कि नहीं? क्योंकि वहां अकेला विकल्प नहीं है, वहां मुख्यता तो ज्ञान की है कि जिस ज्ञान के उपयोग में स्वरूप का भावभाषण हुआ है, पर मुख्यता है पुरुषार्थ की, जिसको ज्ञान बल कहते हैं, कि पुरुषार्थ भी अपने दिशा को बदल करके अंतर्मुख हुआ। जिस पुरुषार्थ की दिशा अंतर्मुख हुई, उपयोग ज्ञान भी उसके साथ चलने लगा, तो बेचारा विकल्प जिसके पीछे पीछे घसीटता हुआ वो भी स्वरूप का विकल्प करने लगता है। वरना विकल्प का स्वभाव पर पदार्थ में जाने का है, लेकिन यहाँ पर उसको भी पीछे पीछे चलना पड़ता है। क्या तो ये बलवान है, ज्ञान और पुरुषार्थ में बलवान हुआ, तो विकल्प को भी आत्मा का विकल्प करने का परिणाम होने लगा है। फिर भी उसकी जाति आत्म स्वभाव से मेल नहीं खाती है, वो आत्मभाव नहीं है किंतु वो अनात्म भाव है, इसलिए उनको खत्म होना पड़ेगा, तो आगे जाके खत्म हो जाएगा। तो कृपालु देव के एक वचनामृत में क्या क्या चीज भरी है, ऊपर से देखो तो कुछ बातें लिख दी है, लेकिन इन सीक्वेंस एकदम क्रम से बात लिखी है। इस तरह से परिणाम आत्मार्थ देव का आता है, तो कैसे आता है कि ज्ञान तथा रूप ज्ञानी पुरुष के समागम विशेष करके उपासना करते हैं तब
ज्ञान
बल तक नहीं दी, मैं देखिए पुरुष का मुख्यता किया, वो तो 12वें गुण
स्थान
तक लेते हैं।
हाँ, एक पत्र में लिया है ना केवल ज्ञान का कारण भी
शक्ति एक अंश असाता से लेकर के पूर्ण कामता, पूर्ण कामता मैंने पूर्ण परमानंद उसमें सत्पुरुष के कारण है। तो कृपालु देव के हृदय में सत्पुरुष ऐसा बैठ गया है तो इनका अनुभव बोलता है, क्या खुद का अनुभव बोलता है। बहुत परेशान थे वो सत्पुरुष मिलने के पहले, वो भी बहुत परेशान थे, जब मिले तब ये मोक्ष हथेली में देखा, कहाँ देखा, मोक्ष तो हथेली में देखा, तो इनके हृदय में सत्पुरुष कैसे बैठे होंगे, तो जिस जैसे बैठे हैं वो दिखा रहे हैं। आत्मार्थी जीव को
देखा
कि
ऐसा
देखा, तो क्या है जिसको वो बात समझ में नहीं आती है, उनको अथेली में दिखाते हैं, अंदर की समझ में नहीं आती है कि मोक्ष स्वरूप ही मैं तो हूँ, मोक्ष होना बोना क्या है, मोक्ष होने का भी मेरे में तो नहीं है, ये तो मोक्ष का ज्ञान हो गया, ये वो बात जो नहीं समझेंगे उसको कहते तो देखो इसकी अथेली में मोक्ष को देता है, तरीका होता है समझाने। ऐसा ज्ञान बल वर्धमान होने के लिए आत्मार्थी जीव को तथारूप ज्ञानी पुरुष का समागम, ज्ञानी पुरुष का समागम नहीं लिखा, तथारूप ज्ञानी पुरुष का समागम, उसी प्रकार के सुयोग्य प्रकार का समागम जब जब जिस भूमिका में हो तब तक उस भूमिका का समागम उसको मिलता रहे। ऐसा जब जब जिस भूमिका में उसका प्रवेश हो तब तक वो उसको ऊपर उठाता रहे, देखो इससे आगे और एक कदम, यहाँ एक और कदम इधर आगे जाना है, और एक कदम इधर आगे जाना है, ऐसा सुयोग्य प्रकार का समागम विशेष रूप से विशेष प्रकार से यानी पूरा रस लेकर के उपासना करने योग्य है, आराधन करने योग्य है। मैंने पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से और एकाग्रता से और कहीं इधर उधर नहीं जाकर के परिणाम में सत्संग के उपासना करना योग्य है, यानी आज्ञा का अमलीकरण हर स्टेज में करते रहे। जिस स्टेज में आएगा फिर बनेंगे नहीं, इससे आगे वो स्टेज है उसको उठाएगा, अमलीकरण करेगा, इसमें प्रवेश करेगा तो फिर इससे आगे वो है उसका अमलीकरण करेगा। ऐसे
ज्ञानी पुरुष के समागम की उपासना विशेषता करनी योग्य है, मात्र इतना ही नहीं लिखा कि ज्ञानी पुरुष की उपासना कर विशेषता करनी योग्य है। समागम की उपासना,
समागम की उपासना विशेषतः,
समागम की उपासना
ज्ञानी पुरुष की उपासना में क्या करना है? वहाँ कोई माथा दबाना, पैर पर पक्षम से करना, वो बात नहीं है। समागम की उपासना करना है तो समागम में जो बात आती है उसको एकदम प्रमाणिकता से अमलीकरण कर ले, आज्ञा को उठा ले या शिरोधार्य करे, उसी को उपासना कहते हैं। उपासना है तो आराधना है, वही इस भूमिका की साधना है। और ये कोई सिर्फ विचार करने का स्टेज नहीं है, जो भी कहते हैं उसको शीघ्र रूप से एग्जीक्यूट कर ले, स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन है वो। हाँ, इस तरह से जो मोक्ष काम करता है, आगे बढ़ता है, उसका शीघ्र कल्याण हो ही जाता है।
बिना
माथा मारे ब्रह्म वाक्य है, माथा क्या लगाना है?
ये क्या होता है, ज्ञानी की आज्ञा का तो अनुकरण करेंगे, परंतु इतना लगा देते हैं ना, इसका कोई
तो अनुकरण कैसे होगा? किंतु परंतु किंतु परंतु वाले का काम नहीं है। पहले सोच लिया, समझ लिया कि मेरे परम कल्याण का समय या मौका है, मेरा परम कल्याण का एक अवसर आ चुका है, अब मुझे जो काम करना है पूरी ताकत से कर लेना है, तो जो भी आज्ञा मिली वो ब्रह्म वाक्य समझो, बात खत्म, माथा कहाँ लगाना।
संसार को किक लगा करके बात करते हैं, उसको हम वर्तमान में संसार में एकदम रचे पचे हुए पड़े हैं, तो थोड़ा तो पोलाइटनेस से बात करना चाहिए, एक बार थोड़ा अभाव कम हो फिर अभाव हो, ये तो किधर किक लगाने वो हम कैसे कर पाएंगे?
अभी किक लगाओ, देर सवेर लगाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ के लगाओ, लेकिन एक दफे तो जोर से किक लगाना पड़ेगा ही, तब एंट्री मिलेगा, मुमुक्षु की भूमिका की एंट्री मिलेगा। समागम तो प्रत्यक्ष ही होता है, समागम रूप तो ऐसा होता है कि जब प्रत्यक्ष योग में जो भी हमारे लायक आज्ञा मिली उसका अमलीकरण करने का हमारा प्रयास है, तो उस उपदेश को हम प्रत्यक्ष वक्त करके ग्रहण करें, प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन प्रत्यक्ष वक्त। और ज्ञानी पुरुष इस वक्त परोक्ष है तो हम हमारे हृदय में उसको प्रत्यक्ष कर लें कि अंदर बैठ गया है और हमको आज्ञा दे रहे हैं, अंदर बैठे बैठे हमको आज्ञा दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है, उसको समागम रूप कहते हैं। जब समागम प्रत्यक्ष अवेलेबल नहीं है तो ऐसे करते हैं, करते हैं, करने वाले ऐसे करते हैं, लेकिन उसमें समाधान नहीं करना है कि चलो परोक्ष है तो समाधान कर ले, वो बात नहीं है। समाधान करने की बात माने वो तो है, प्रत्यक्ष का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कहीं भी कोई भी कार्य में प्रत्यक्ष का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब बताइए कहीं हो तो, ये जो दुनिया में बड़ी बड़ी हस्ती है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसको भी पर्सनल मीटिंग क्यों करनी पड़ती है? वो अपने व्हाइट हाउस से बाहर क्यों निकलता है? बाहर निकलने में तो ये पूरा जोखम है। हाँ, कैनेडी को हर बाजार में हायरिंग किया कि नहीं किया, तो उसको तो घर बाहर निकलने में उतना जोखम है, चाहे कितनी भी सिक्योरिटी हो अगल बगल में, तो कोई कम खर्चा नहीं रखते हैं। तो रोज का लाखों की तादाद में खर्च होता है, लाखों डॉलर की तादाद में सिक्योरिटी का, फिर भी उसको क्यों बाहर घर बाहर निकलना पड़ता है कि पर्सनल मीटिंग, पर्सनल विजिट रिक्वायर्ड? तो उसको उसकी जरूरत को महसूस करते हैं तो जान की बाजी लगा करके भी निकलते कि नहीं निकलते। हाँ, मतलब आजकल तो इतने कम्युनिकेशन के साधन है कि आप अपने कमरे में बैठे बैठे पर्दे पर मीटिंग बुला सकते हो, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, बातचीत कर सकते हैं जैसे आमने सामने बैठे। इतने साधन तो आजकल हो गए हैं। उस ऐसे साधन इसके कमरे में होने के बावजूद भी वो पर्सनल मीटिंग क्यों करते हैं? इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं? ऐसे ज्ञानी पुरुष का पर्सनल यानी व्यक्तिगत प्रत्यक्ष रूप से जो समागम होता है, तो उसकी प्रत्यक्षता में पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है। बहुत फर्क पड़ता है और नहीं है में कितना फर्क, तो आप खुद बताओ। तो एक जिंदा है वो एक मुर्दा है, कितना फर्क? एक आदमी लेटा हुआ है और उसका श्वासोश्वास नहीं चलता है तो वो नहीं है, और श्वासोश्वास चलता है तो वो है। कितना फर्क है या नहीं है? नहीं है उतना मालूम पड़ा, बहुत बड़े आपत्ति हो जाएगी। अरे क्या अभी तो लेटा हुआ है, खत्म हो गया क्या? कितना रिएक्शन आएगा? घर वालों से पूछ लेना तो कितना फर्क पड़ता है या नहीं है में, उतना फर्क प्रत्यक्ष और परोक्षता में है। बहुत बड़ा अंतर। उसमें भी वर्तमान काल के जीवों को तो बल्कि दृढ़ छाप इंप्रेशन होने के लिए बहुत अंतराय दिखने में आता है। बलवानपना आने में बहुत अंतराय, सबकी वो शिकायतें हैं, जोर नहीं चलता, उत्साह नहीं चलता, बल नहीं आता, बस सब रोते हैं, ऐसे ही रोते हैं। जिससे तथारूप शुद्ध जिज्ञासु वृत्ति से दीर्घकाल पर्यंत सत्समागम उपासना की आवश्यकता रहती है। इस कारण से तथारूप शुद्ध जिज्ञासा वृत्ति से मैंने भावना से दीर्घकाल पर्यंत सत्समागम की उपासना की आवश्यकता रहती है, और सत्समागम के अभाव में वितराग स्रोत परम शांत रस प्रतिपादक वितराग वचनों की अनुप्रेक्षा बार बार कर्तव्य है। चित्त स्थैर्य के लिए, चित्त की स्थिरता यानी चंचलता घटाने के लिए ये परम औषध है। सबसे बातें हैं, सबके स्वाध्याय में देंगे।